Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स और टेल्स। ये दोनों ही हमें जीवन के लिए बहुत ही सुंदर दो बातें सिखाती हैं। हेड्स अर्थात हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहो, रुको मत, चाहे कुछ भी हो जाए, विपरीत परिस्थितियां आए, बाधाएं आए, परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, लेकिन जीवन में आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है, ये हेड्स हमें सिखाता है। वहीं टेल्स हमें ये कहता है कि जो बातें बीत गई उन बातों को भूल जाओ। टेल पीछे ही होता है ना, तो जो बीत गई है उन्हें भूलते जाओ, क्लियर करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि जब हम बातों को जो बीत गई हैं, कल की बातें हैं, उन्हें पकड़ के रखते हैं तो भारी भी होते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे किसी के सिर पे 10 किलो का, 20 किलो का, 50 किलो का वजन रख दिया जाए और उसे कहा जाए कि तुम चलो या दौड़ो, तो कितनी तकलीफ होगी ना उसे, क्योंकि बोझ है उसके सिर पे। और यदि वो बोझ उतार दिया जाए, फिर कहा जाए कि तुम आगे बढ़ो, तो बहुत खुशी से, आनंद से वो आगे बढ़ेगा और आनंद के साथ साथ वो जीवन की सफर का मजा भी लेगा। तो मित्रों, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, आगे बढ़ते रहें और पास्ट की जो बातें हैं उन चीजों को हम भूलते भी चलें। इस सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं, भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया।
हम बचपन से ही सिक्का उछालते रहे हैं भ्राता जी, लेकिन ये सिक्के इतनी अच्छी बातें भी सिखा सकती हैं, ये पता नहीं था।
आजकल संसार के बहुत लोग पास्ट में ही जीते हैं
जी।
पास्ट की बुरी घटनाओं का इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है। अच्छी घटनाएं भूलती हैं, बुरी घटनाएं याद रहती हैं
जी।
आजकल ये मनुष्य की मेंटेलिटी हो गई है, किसी की खुशी गुम है, कोई उनको याद कर करके मन को बहुत सारे व्यर्थ संकल्पों में ले जा रहे हैं और इससे सफलता प्रभावित होती है। इसलिए जिसको सफल होना है उसको वर्तमान में ही जीना चाहिए और पास्ट को भूलते चलना चाहिए। अपनी मेंटेलिटी ऐसी बना दें कि नया दिन आते ही, आज नया दिन है तो नए विचार, दृष्टि नई, सब कुछ नया ही नया, आज एक नई उमंग लेकर हम आज के दिन को व्यतीत करेंगे। दिन में कुछ भी अच्छा बुरा होता है, नो डाउट उसका इफेक्ट मन पर रहता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, राजयोग के द्वारा, स्वमान के द्वारा रात को ही हम उसको डिलीट कर सकते हैं और नए सवेरे से नए दिन की शुरुआत करेंगे, नए उमंग से, नए विचारों से, नई प्रेरणाओं से। और हम सब जो ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं, जिन्होंने राजयोग सीखा है, वो तो रोज सवेरे प्रभु मिलन करते हैं और रात को अपने प्यारे शिव बाबा के समक्ष सारी चीजें रख देते हैं, बोझ कोई मन पर हो वो भी उसको अर्पित, हल्के होकर सोते हैं, सवेरे उससे मिलन करते हैं, तो रोज ही जीवन में एक नया उमंग रहता है और इससे सफलता सहज हो जाती है
जी। और इससे जीवन में शायद लगातार इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियां आगे बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ कि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी रही होंगी जो जब ब्रह्मा कुमारीज ने शुरुआत की थी तब उन्होंने भी शुरुआत की होगी आगे पीछे, लेकिन आज ब्रह्मा कुमारियां कहाँ हैं और बाकी की संस्थाएं जो उनके समकालीन रही होंगी, मैं देखता हूँ कुछ ऐसी रही हैं जो वहीं की वहीं रह गई हैं, तो शायद यही एक कारण है कि पास्ट को भूलते चल रहे हैं, आगे बढ़ते चल रहे हैं।
और दूसरी चीज ये है कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा, किसी आचार्य के द्वारा शुरू की गई थी, उसके जाने के बाद उसका
बंटवारा हो गया,
कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। और हमारे यहाँ क्या है कि ये डायरेक्ट ईश्वरीय कार्य है, ऊपर से हो रहा है, यहाँ कोई इसका मालिक नहीं है, नीचे वाले वो तो एडमिनिस्ट्रेशन में
यहाँ ऊपर वाला ही मालिक है,
ऊपर वाला मालिक है, लेकिन यहाँ उसी की गाइडेंस से कार्य होता है, इसलिए निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, कोई बंटवारा, कोई तोड़ फोड़ इसकी गुंजाइश ही नहीं है
जी। जी जी, और ये एक बहुत बड़ी बात है भ्राता जी, लोग शायद पूछते भी होंगे कि क्या ऐसा कारण है कि ब्रह्मा कुमारियां दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही हैं, वो कहते हैं ना दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करती चली जा रही हैं, बाकी की जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, कहीं ना कहीं उनमें द्वंद रहता है और जहां हैं वहीं रह गई हैं, लेकिन यहां पे लगातार प्रोग्रेस का कारण लोग पूछते अवश्य
हैं, क्योंकि आगे बढ़ाने वाला बहुत पावरफुल है
जी।
कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, उल्टी सुलटी बातें करे, लेकिन हम सबके साथ गॉड्स पावर है जो हमेशा है, न केवल गॉडली पावर है लेकिन उसकी सुप्रीम गाइडेंस है। तो अगर कोई छोटी मोटी बातें आती भी हैं तो वो सहज ही पार हो जाती हैं। और फिर क्या है, यहाँ हम लोग जो आते हैं वो किसी पद पोजीशन को पाने के लिए नहीं, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए आते हैं। तो हर एक का एक लक्ष्य अलग है।
जी, जी।
चीफ बनना, मैं हेड बन जाऊं, मेरे पास पैसा बहुत हो, मेरा नाम हो, इसकी यहाँ जरूरत नहीं होती। ना कोई इसके लिए यहाँ संघर्ष करता। यहाँ तो संघर्ष यदि है तो अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए, अपने को महान योगी बनाने के लिए, इस माया को परास्त करने के लिए, ये इम्पोर्टेंट लक्ष्य रहता है।
सुंदर लक्ष्य है, सचमुच वंदनीय है, पूजनीय है जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, क्योंकि ज्यादातर दुनिया में संघर्ष आज इसी नाम मान शान का ही है, और यहाँ साधना के लिए संघर्ष है कि कौन साधना के पथ पे आगे बढ़ सकता है। चलिए ब्रता जी, सुंदर बात के साथ मैं आपको मेल की ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल अनाम आया है हमारे पास, और ये कहते हैं कि ओम शांति भाई जी, विवाह से पूर्व मैं इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़ी हुई थी, संपर्क में थी। अब मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और मेरा एक बच्चा भी है। मेरे कुछ प्रश्न हैं, ब्रता जी कुछ प्रश्न रख रही हैं। ये कहती हैं, पहला प्रश्न इनका है कि मेरा स्वभाव पहले बहुत शांत था, पर अब छोटी छोटी बातों पर मुझे गुस्सा आने लगता है, सहन शक्ति खत्म होती जाती है और गुस्से में कुछ भी उल्टा सुलटा मैं बोल देती हूँ, और कई बार बहुत रोने का मन करता है। ऐसा क्यों होता है कि कभी तो मन एकदम शांत रहता है और कभी कभी बिल्कुल ही चिड़चिड़ा सा हो जाता है। कभी किसी इंसान को देख के प्यार पैदा होता है और कभी उसके लिए नफरत की भावना पैदा होने लगती है, तो ऐसी मेरी मानसिक स्थिति क्यों हो गई है?
मुझे लगता है इसके बच्चों ने इसको ज्यादा तंग कर दिया है।
ब्रदर जी, बच्चों भी पालना, एक ही बच्चा है, एक शायद ही है। वो भी 1-1.5 साल का ही होगा क्योंकि 3 ही साल हुए हैं इसकी शादी को।
ठीक है, नहीं तो कई माताओं को बच्चे ही बड़ा इरिटेट रखते हैं, इससे वो इमोशनल हो जाती हैं, उन्हें गुस्सा ज्यादा आने लगता है। और ये क्रोध ऐसी चीज है जो मनुष्य की बुद्धि को बहुत भ्रमित करता है, उसकी एकाग्रता को बहुत नष्ट करता है। और एक चीज मैं बहुत पहले सीख ली थी, किसी ने मुझे उन दिनों सिखा दी थी जब मैं अपने क्रोध पर एक अंकुश लगाना चाहता था और इसको मूलतः नष्ट कर देना चाहता था, वो ये थी कि जब तुम्हें क्रोध आता है तो तुम्हारी बुद्धि का द्वार खुल जाता है, बाहर की बैड एनर्जी उसमें प्रवेश करने लगती है, इसलिए क्रोध बहुत बुरा है। तो जिनको क्रोध बहुत आता है ना, वो बैड एनर्जी को बहुत ज्यादा रिसीव करते हैं। कैसी बैड एनर्जी चारों ओर मनुष्य के है, घर में कैसी है, इसके सास ससुर का इससे व्यवहार कैसा है, पति के वाइब्रेशंस कैसे हैं, इस कारण ये सेंसिटिव हो गई है। तो जब मनुष्य बहुत सेंसिटिव हो जाता है तो सूक्ष्म रूप से ध्यान देने की बात है, वो प्यासा हो जाता है, लोग उसे अच्छा कहें, अप्रिशिएट करें, प्यार करें, हाँ ये वो, और इसके कारण वो भी बहुत निगेटिव हो जाता है क्योंकि दूसरे ऐसा सदा कर नहीं पाते हैं। इसलिए इनको अब चाहिए कि पुनः ये राजयोग का अच्छा अभ्यास करें, कम से कम अपने गृहस्थ में रहते हुए सवेरे और शाम आधा घंटा योग का अभ्यास करें। कुछ जीवन की धारणाओं पर भी इनको बहुत अच्छा ध्यान देना है। मैं 2-4 गुण इनको सजेस्ट करूंगा। बहुत अच्छी सरलता, इजी गोइंग नेचर, बहुत संतुष्टता, अपने को संतुष्ट करें, सब कुछ तो है, तृप्त होकर रहें, और अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए सुंदर संकल्प करें। ये 3 धारणाएं अगर ये जीवन में अपनाएंगी तो पुनः एनर्जेटिक हो जाएंगी, लाइफ को एंजॉय करेंगी। होता क्या है कि शादी से पहले कोई भी लड़की बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखती है, हम तो उसे जानते नहीं क्योंकि हम उस फील्ड से गुजरे नहीं है, पर हमें लड़कियां बताते हैं ऐसी ऐसी विजन बनाए थे, तो क्या होता है उसका माइंड पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। किसी को सास ऐसी मिल गई कि बस जीना मुश्किल कर रही है, मेरे ऑर्डर में ही चलना है, ये घर मेरा है,
सीधा आकाश से वो जमीन पे आ जाती है,
आ जाती है। पति भी किसी को ऐसा मिल जाता है तो जो मात्र स्नेही है होना भी चाहिए, पर पत्नी पे भी तो ध्यान देना चाहिए, तो पत्नी बेचारी डिप्रेस हो जाती है। तो इनको ये 3 धारणाएं बहुत अच्छी रखनी है और एक बहुत सुंदर संकल्प रखना है, मेरा लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, लाइफ से अधिक वैल्यूबल चीज कुछ नहीं है, उसको महत्व दें। और ये ध्यान रखना कि मेरे हर नेचर का या वाइब्रेशंस का इफेक्ट बच्चे पर जा रहा है, छोटे बच्चों की ग्रहण शक्ति ज्यादा तेज होती है, इसलिए बच्चे के कल्याण के लिए और अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए मुझे पॉजिटिव होना है, राजयोग करना है और किसी से कुछ कामना नहीं करनी है, मैं तो देने वाली हूँ, सब कुछ देते चलना है। और ये 3 चीजें मैंने कही, सरलता, संतुष्टता और बहुत खुश रहने की नेचर, बस इससे इनका जीवन प्रकाशित रहेगा और ये सबको देती चलेंगी और लोग फिर इनसे बहुत खुश रहेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, होता यही होगा प्रताप जी कि अपने घर में वो एक अलग माहौल में होती हैं, आप एक नए माहौल में आती हैं तो यहाँ एडजस्ट करते करते कई बार बहुत इरिटेट होने लगती होंगी कि सास से भी ससुर से
तीन फील्ड हो जाते हैं। हाँ, लड़कियों के लिए तीन फील्ड हो जाते हैं, एक उनका मायका, अब वहाँ कैसे रही है वो, कैसा उनसे व्यवहार हुआ है, वो पढ़ाई में कैसी रही हैं, उनका जीवन टोटल कैसा रहा है, फिर उनका वो कॉलेज का सर्किल, अब वहाँ उनके फ्रेंड्स कैसे थे, किसी ने उनको इरिटेट किया, किसी ने उनको धोखा दिया, या बहुत प्यार और सम्मान रहा है, और तीसरा अब एक नए घर में आ गई है और वहाँ कैसा मिला है, वहाँ इसको एडजस्ट करना है, अपनी कामनाओं को छोड़ना है। अब ये तो कन्याओं को कोई सिखाता नहीं कि तुम शुरुआत कैसे करो
जी,
अगर शुरुआत एक अच्छी हो जाए, शुरुआत अच्छी हो जाए, वो सबका दिल जीत ले, तो बाकी चीजें आई गई हो जाती है। तो इसलिए इन पे बहुत बुरा असर पड़ता है, तीन चीज करेंगे तो पार हो जाए।
बिल्कुल बिल्कुल प्रताप जी, ये दूसरा भी प्रश्न ये रखती है, ये कहते हैं की मैं MBA नेट क्वालिफाइड हूँ और यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुके हूँ, पर घर संभालने के मामले में मैं बिल्कुल ही अब अपने आप को फेल महसूस कर रही हूँ। मैं कई बार परमात्मा को कहती हूँ कि कृपया मुझे मेरी गृहस्थी अच्छे से चलाने में मेरी मदद कीजिए, और कई बार मेरे लौकिक माँ बाप को भी बुला करके मेरी कंप्लेन कर चुके हैं मेरे जो सास ससुर हैं वो। तो ऐसा लगता है कई बार मैं भगवान से कहती हूँ कि भगवान आपने मुझे लड़की क्यों बनाया, मुझे लड़का ही बना देते।
चलो अगली बार लड़का बनवा दिया जाएगा, भगवान जरूर सुन लेगा। ये बात बिल्कुल इनकी ठीक है,
मतलब MBA में ब्रदर जी बिल्कुल अभी घर का संचालन,
कांग्रेचुलेशन की पात्र है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट रही है, हम इन्हें अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन वहाँ तो पूरा मैनेजमेंट सिखाया जाता है, तो घर को मैनेज करना भी तो इन्हें अब टर्न कर देना चाहिए अपनी एजुकेशन को, कि घर को भी कैसे मैनेज किया जाए। एक एक नारी घर की अच्छी मैनेजर होती है तो सब कुछ बहुत सुंदर हो जाता है।
जी, जी।
बस ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, और उस कला को भी सीखना पड़ेगा। देखिए, जैसे हमने कहा तीन फील्ड इनके सामने रहते हैं, तीन भिन्न भिन्न तरह के क्षेत्रों से ये गुजर के आई है, और जब ये टॉपर स्टूडेंट रही हैं तो निश्चित रूप से इनका सम्मान बहुत रहा होगा, इनको प्यार बहुत मिला होगा। अब वहाँ कैसा मिला है, तो इनको अपने को टेंशन में नहीं लाना है, बहुत लाइट करना है, और इस ईगो को भी नहीं रखना है मन में कि मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, अब मैं घर में हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, एक पति की पत्नी हूँ, मेरे सास ससुर हैं, वो भी मेरे गार्जियन जैसे हैं, अब तो इन सब के साथ मिलकर कैसे चलना है।
जी, जी।
केवल मैं जो कहूँ वो नहीं, अपने ईगो को एक तरफ रखकर, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट रहा हो उसमें थोड़ा बहुत ईगो हो जाता है, सब में नहीं होता पर अधिकतर में हो जाता है, तो उसको एक तरफ रख के अपने परिवार में बहुत अच्छी हारमोनी पैदा करें और अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें, अब अपने गृहस्थ को सुचारू रूप से चलाने।
जी जी जी, क्योंकि ये महसूस कर रहे हैं ब्रदर जी और कह भी रही हैं कि मैं गृहस्थी में फेल हो रही हूँ, यहाँ के मैनेजमेंट में फेल हो रही हूँ, वहाँ मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो क्या सजेस्ट करेंगे ब्रदर जी? ये मैं पढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो हमारे यहाँ जो घर में माताएं अपनी बेटियों को सिखाती हैं मैनेजमेंट, कि घर को कैसे मैनेज करो, किचन को कैसे मैनेज करो, तो ये चूल्हा चौका भी क्या लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ संभालना चाहिए ताकि घर के मैनेजमेंट को समझ सके?
चूल्हे चौके की नहीं, लेकिन व्यवहार भी सिखाना चाहिए, उनको सुंदर संस्कार भी सिखाने चाहिए, और नेचुरली है कि बहन को भोजन बनाने में तो एक्सपर्ट होना ही चाहिए, और थोड़ा सा साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुतों की आदत क्या होती है, मान लो माचिस ही उठाई, जलाना है कुछ, फिर कहीं भी रख दी, फिर ढूंढ रहे हैं उसको, कुकर की सीटी लगाई थी, अब उतारी, पता नहीं कहाँ रख दी। तो एक ये छोटा सा मैनेजमेंट अपने घर का, कि जो चीज़ जहाँ से उठाओ वहीं रख दो, तो साफ सफाई भी रहेगी और सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज भी किया जा सकेगा। तो सचमुच घर में माताओं को, अपनी कन्याओं को ये ट्रेनिंग भी थोड़ी देनी चाहिए, इसका अभाव आजकल होता जा रहा है, क्योंकि लड़कियां सब पढ़ाई पर ही पूरा फोकस करती हैं, करना भी चाहिए उन्हें, लेकिन दूसरा जो फील्ड है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि वो जो दिल का रास्ता है वो पेट से होके जाता है, तो यदि भोजन अच्छा बनाएंगे तो सबका दिल भी जीत पाएंगे। अगला तीसरा इनका प्रश्न है व्रता जी की, ये कहती है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, अब मेरी मम्मी पापा ने मुझे करने नहीं दिया ये कह के कि हमारे घर में लड़कियां जॉब नहीं करती हैं, अब यहाँ मैं शादी होके आई हूँ तो यहाँ का भी माहौल ऐसा है कि मुझे जॉब नहीं करने देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं घर में ही रहूं और घर को संभालूं, तो यहाँ पे भी मेरे मन में एक द्वंद पैदा होता रहता है कि मैं जॉब करूं या घर संभालूं।
नहीं, बिल्कुल शी इज राइट, क्योंकि जो इतनी होशियार स्टूडेंट रही हो उसके टैलेंट्स यदि यूज नहीं होंगे तो मैं तो साफ कह देता हूँ उसको कहीं ना कहीं डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि जिसने पूरा जीवन उस चीज को अचीव करने के लिए लगा दिया था और अब वो देख रही है कि वो तो सब बेकार हो गया, मुझे तो यहाँ घर को संभालना है, एक बच्चे को संभालना है, तो कहीं ना कहीं इसके साथ ससुर को अब इसको इजाजत अवश्य देनी चाहिए कि ये अच्छी जॉब करे। और देखिए बहुत परिवारों में
बच्चा छोटा हो रहा था जैसे तो मुझे लगता है एक या डेढ़ साल,
सास भी तो है ना, वो संभाल सकती है। बहुत सारे परिवारों में, हम लोगों के भी लौकिक परिवारों में ये था कि लड़कियां जॉब नहीं करती, लेकिन कल्चर बदल चुकी है ना, अब सब कुछ बदल गया है। अब उनको आप हाईली एजुकेटेड कर रहे हो और फिर कहें कि वो फील्ड में भी न जाएं, तो ये जरा उचित नहीं है, छोटे विचार हो जाएंगे। इसलिए समय के बदलाव के अनुसार इस मान्यता को जरा एक तरफ रखकर अपनी ऐसी एजुकेटेड और योग्य बच्चियों को जॉब में जरूर जाने देना चाहिए, उससे वो मैच्योर होंगी। ठीक है, कुछ उठा पटक भी होती है, मनुष्य हार जीत से भी गुजरता है, गिरता चढ़ता है, इससे ही तो मनुष्य सीखता है ना, मैच्योरिटी आती है। इसलिए इस संकल्प को मैं फेवर करता हूँ इनका कि इनको जॉब कर लेनी चाहिए, इनके सास ससुर को इनको थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए।
कई बार ऐसा होता है भ्राता जी, मान लीजिए शायद इनका एक ही बेटा हो, घर बिल्कुल संपन्न है, धन धान्य से किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर नेचुरली उनके जो सास ससुर है उनके मन में आता होगा कि कमा के करेगी क्या, बाहर जाने से फायदा क्या है, घर में ही रहे, इतना बड़ा घर है, इतना धन संपदा है, तो यूज करे या मैनेज करे, तो एक मेरे ख्याल से ऐसी एक मान्यता भी हो सकती है।
पर मैंने ऐसी कन्याएं भी देखी जिनके घर बहुत साहूकार और मतलब वो अरबपति हैं, फिर भी लड़की जॉब पर जाती है। मैं पूछता हूँ क्यों, तुम्हारा लाइफ तो बहुत बिजी हो जाए। का घर में रह के ना डिप्रेशन होता है, जब हमने इतनी अच्छी पढ़ाई की है उसका यूज हो तो हम एंजॉय करते हैं लाइफ को।
जी, जी, जी।
तो यही चीज इनके साथ है, थोड़ा समय भी इनको दिया जाए और देख लें फिर वो कितनी सफल होती है, कितनी हैप्पी रहती है वहाँ, वो दोनों को ठीक से संभाल पाती है या नहीं, फिर जैसा आगे निर्णय हो वैसा कर लिया जाए, लेकिन फिलहाल इनकी जॉब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए।
बिल्कुल, मतलब थोड़े समय के लिए भले जाएं, उसके बाद फिर एक दोनों तरफ बैलेंस। वैसे भी ये एमबीए में टॉपर रही हैं तो बिल्कुल दोनों तरफ ये मैनेज ठीक ठीक कर ही लेंगी। एक इनका अगला प्रश्न भ्राता जी, कहती है आई ऑल्सो वंडर दैट हाउ डू यू मैनेज योर लाइफ सो इजीली विद सच बिजी शेड्यूल एंड हाउ डू यू गिव पर्सनल सजेशंस टू ईच एंड एवरीबॉडी, स्टिल नॉट इवन अ सिंगल लाइन ऑफ टेंशन ऑन योर फेस।
बिल्कुल, हम भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और सिखाते भी सबको यही है, और एक स्पिरिचुअल फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया है जीवन में वही हम सबको सिखाते हैं। यदि हमारे पास स्पिरिचुअल पावर हो, यदि हमारा मन बहुत प्रसन्न रहता हो, यदि हम बहुत इजी गोइंग नेचर हों, तो हमारी एफिशिएंसी कम से कम डबल तो हो ही जाती है, इसलिए हम थोड़े समय में ज़्यादा काम कर लेते हैं। दूसरा, हमने एक अच्छी चीज़ सीखी है कि हर कार्य को, हर सिचुएशन को एंजॉय करना है। मान लो हमें देरी हो रही है, हमारा शो ही होना है और कुछ भी मिस्टेक हो रही है, हमें देर हो रही है,
कैमरा काम नहीं कर रहा,
कभी बिजली चली गई है, कभी और कोई फॉल्ट हो गया, हमें देर हो रही है, हमें जल्दी करना था, तो मैं उसको माइंड नहीं करता, तो स्वीकार कर लेते हैं तो टेंशन नहीं रहती, और टेंशन न रहने से मन और बुद्धि बहुत अच्छी तरह कार्य करती है। यही कला सबको सीखनी है कि हर सिचुएशन हमारे अनुकूल तो नहीं होगी, कुछ प्रतिकूल भी होंगी, हर चीज को हम स्वीकार करके अपना एक मार्ग निकाल लें, और एक ध्यान रखें कि सबसे पावरफुल चीज हमारी मन की स्थिति है, सबसे बड़ी पावर हमारी मन की पावर है, उसको हम कहीं भी वेस्ट ना करें, हम अपने को जरा भी इरिटेट होने ही ना दें, तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा जीवन में।
जी जी जी। और इनका जो एक प्रश्न है व्रता जी की इतने सारे वैसे कार्य हैं, बहुत सारे कार्य आप करते हैं व्यक्तिगत रूप से, मैं भी देखता हूँ कि आप कभी दिल्ली में हैं तो कभी चेन्नई में हैं, कभी कोलकाता में हैं, और विदेश भी आप जाने वाले हैं, लोगों से मिल, तो इतना सब कुछ सचमुच मैनेज करना लोगों को बहुत वो लगता है कि कैसे विदाउट इरिटेशन ऐसे कैसे पॉसिबल है, केवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या कुछ विशेष अभ्यास भी आप करते हैं?
यही कि विदाउट इरिटेशन है तो ही मैनेज कर पाते हैं, अगर इरिटेट हो जाए तो मुश्किल मैनेज है। देखिए आज ही मैं भोजन खा के आ ही रहा था, अब मैं निकला ही तो वहां तो ग्रुप के ग्रुप खड़े, भाई जी टू क्वेश्चन ओनली, उसका उत्तर दिया मैंने एक ही मिनट में, आगे भाई जी वन क्वेश्चन ओनली, आखिर मुझे जल्दी जाना है, लेकिन फिर भी मैं लाइटली उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए आखिर एक बजे, मेरे पास 5 ही मिनट थे, 5 मिनट में उन सबको सेटिस्फाई करके मैं आगे बढ़ा। तो ये क्या होता है, एक तो सबको संतुष्ट करने का संस्कार
जी।
एक इच्छा, कोई भी असंतुष्ट होकर ना जाए, और एक बहुत इजीनेस, ये हमारी कार्य शक्ति को बहुत बढ़ा देती है।
बिल्कुल। और ये जो पूछते हैं प्रीति जी कि ये सारी जो घर गृहस्थियों की समस्या है, सारी संसार की समस्या है, ये आप कैसे समझ पाते हैं कि हाँ इस समस्या का ये समाधान या निदान होना चाहिए?
स्पिरिचुअल नॉलेज से ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। देखिए अब तो हम बैचलर हैं, हमें गृहस्थ का कोई ज्ञान नहीं, मैरिड लाइफ का कोई ज्ञान नहीं,
लेकिन आप इतनी गहरी गहरी बात
का कोई ज्ञान नहीं, पूर्व जन्मों में तो हम इन सबसे गुजरे हैं ना, तो वो सब हमारे ब्रेन में प्रिंट रहता है, और जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो समय पर वो सब एक्टिवेट हो जाता है, और फिर दूसरों की बहुत सारी बातें हमारे पास आती हैं, उनके अनुभव आते हैं, लोग मिलते हैं, तो हमारी नॉलेज इससे बहुत बढ़ती है, और फिर जो हम समाधान की बात सजेस्ट करते हैं उससे जो हल मिलता है वो सचमुच हमारी नॉलेज को बढ़ाता है। ये हमने देखा कि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हम लोगों से कराते हैं जिनके बारे में हम भी श्योर नहीं होते कि इसका इतना गुड रिजल्ट मिलेगा क्या, लेकिन गुड रिजल्ट मिलता है तो हमें पता चलता है कि ये चीज इतनी पावरफुल है, फिर हम कॉन्फिडेंटली उसको जब दूसरे को सिखाते हैं और इससे नॉलेज का विकास होता है।
बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अभी इनको भी संतुष्टता मिली होगी ब्राता जी, क्योंकि बहुत ही लंबा सा मेल इन्होंने भेजा था कि अब परिवार में शांति और खुशहाली कैसे रहे, उसके लिए उनको प्रकाश मिला होगा। अतः श्रीकांत जी का अगला मेल है, ये कहते हैं कि हमारी जो कार्मिक अकाउंट है उसे बहुत पॉजिटिव वे से हम कैसे सेटल करें, कि हम बिल्कुल सेटल भी कर रहे हैं, मन इरिटेट भी नहीं हो रहा है, हम बहुत पॉजिटिव हैं।
ये तो देखिए योग बल से ही होगा, हम सब जानते हैं कि योग एक अग्नि है जिससे मनुष्य के विकर्म नष्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज, मनुष्य को अपने मन में सभी के लिए प्रेम और शुभ भावनाएं रखनी चाहिए, इससे हमारे कर्मिक अकाउंट को सेटल करने में हमको बहुत इजी फील होता है। तो स्पिरिचुअल पावर अपने अंदर बढ़ाएं, योग की शक्ति बनाएं, और अपने नेचर में सबके लिए प्रेम शुभ भावनाएं भर दें, तो कर्मिक अकाउंट को सेटल करना बहुत सरल हो जाएगा।
बिल्कुल। अगला प्रश्न भ्राता जी, मुझे लगता है विद्यालय से जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि हम परमात्मा को अपनी मनसा से, वाचा से, कर्मणा से कैसे प्रत्यक्ष करें? बहुत बड़ा वैसे तो प्रश्न है।
हाँ, इसको हम लेंगे आगे चलकर। हमारे चेहरे पर वो सब कुछ दिखना चाहिए जो ईश्वरीय ज्ञान हम सुनते हैं, जो ज्ञान हम देते हैं और लेते हैं वो हमारे जीवन में आना चाहिए, तो प्रैक्टिकल लाइफ का ही इफेक्ट दूसरों पर पड़ता है।
आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बड़ा ही गहरा सा प्रश्न है कि परमात्मा कैसे सारे संसार में प्रत्यक्ष हो, यूं तो वो निराकार हैं, सूक्ष्म हैं, दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए एक बड़ी ही सुंदर सी बात थी कि कैसे हम अपने बोल के द्वारा, कर्म के द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष करें। यदि उनकी शिक्षाओं को जीवन में लाते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन से वो प्रत्यक्ष होंगे। जैसे महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, तो क्यों ना हम परमात्मा के अनुरूप अपने जीवन को बना ले, उनकी शिक्षाओं के अनुरूप हमारे संकल्प हो, बोल हो, कर्म हो, तो स्वतः परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और इसकी सचमुच बहुत ज्यादा आवश्यकता है आज के दौर में मित्रों, कि लोग परमात्मा को जाने पहचाने। प्रत्यक्षता का भाव यही है कि हर एक इंसान जो इस संसार में है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, जाति का है, भाषा का है, अपने उस परम पिता परमात्मा को पहचान सके, अपने माता पिता से अपना संबंध जोड़ सके। क्योंकि जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से दूर होता है, उनका परिचय उन्हें नहीं होता है, तो बहुत दुखी होता है, निराश होता है। आपने अनाथ बच्चों को देखा होगा जिनके माता पिता नहीं है, कितना दुख होता है उनके मन में, कितनी अशांति होती है, या वो महसूस करते हैं उस गैप को, उस मिसिंग को, कि काश मेरे माता पिता होते। यही हाल शायद संसार का भी है कि हम उस परम सत्ता से बिछड़ गए हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। तो जब उनकी जानकारी हमें प्राप्त होगी, उनसे हम जुड़ जाएंगे तो संसार में पुनः खुशहाली होगी, लड़ाई झगड़े सभी समाप्त हो जाएंगे। तो गहरा प्रश्न है मित्रों, इसीलिए कल इसकी पुनः हम भ्राता जी से चर्चा करेंगे और प्रकाश लेंगे कि कैसे उन्हें प्रत्यक्ष भी किया जाए और कैसे सारा संसार उनसे जुड़ भी सके। आप अपना ख्याल रखिएगा, कल इसी समय आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।